हाँ जी, हमने आज की क्लास में जो किया है वो टॉपिक्स हमने शुरू किए हैं नहीं अमृतसर, वो पहले कभी नहीं करवाया, ये पहली बार है। चले, हाँ जी, हमने आज की क्लास में जो टॉपिक शुरू किए हैं वो है सेक्शन 136, सेक्शन 137, 138। फिर आज हमने शुरू किया सभी ICDR रेगुलेशन की 25 की, हमने 25 अभी हमने पढ़ी थी थोड़ी सी बस, और 26 हमने पढ़ा है। 26, 26 भी पूरा नहीं हुआ, 26 एक चल रहा था। चले तो पहले मैं बात करता हूँ 136 जो कि अकाउंट्स का टॉपिक है। सेक्शन 136 क्या कहता है? ये कहता है राइट ऑफ द मेंबर टू ऑब्टेन द कॉपीज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट ऑफ द मेंबर्स टू ऑब्टेन द कॉपीज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट डज इट मीन? ये कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हर कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड रिपोर्ट प्लस अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि बोर्ड रिपोर्ट वगैरह, ये सब के सब सर्विस करने पड़ेंगे। किस किस को? सारे के सारे मेंबर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिफॉल्टिंग। डिफॉल्टिंग का मतलब होता है कि अगर किसी का कोई कॉल्स इन एरियर्स वगैरह है तो उसको भी भेजना ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो मेंबर है, आपने शेयर फॉरफिट नहीं किए। उसके अलावा डिवेंचर ट्रस्टी को भी भेजना पड़ेगा। एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन में कौन आता है? ये चार्ट इसी के लिए है। एनी अदर पर्सन में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफिशियल असाइनी। ठीक है, फिर उसके बाद लिस्टेड कंपनीज के लिए एक और क्लॉज रखा गया है। वो क्या कहता है कि लिस्टेड कंपनीज, अगर आप एक काम कर दो कि कॉपीज अवेलेबल कर दो इंस्पेक्शन के लिए एट रजिस्टर्ड ऑफिस 21 दिन पहले, 21 दिन पहले अगर ये कॉपीज अवेलेबल कर दो, और आप ये स्टेटमेंट AOC 3, जिसके अंदर क्या होता है साइलेंट फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, AOC 3 अगर भेज दो हर मेंबर योर ट्रस्टी को, डिबेंचर होल्डर को 21 दिन पहले, तो भी माना जाएगा कि आपको ये सर्विस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो सर्विस होती है ना इन सबको, ये कम से कम 21 दिन पहले होती है, 21 क्लियर डेज। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो कि सेक्शन 101 में था, बिल्कुल वही का वही कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गई बात? चले, तो लिस्टेड कंपनी आपको दोबारा से सेपरेटली भेजने की जरूरत नहीं है, अगर आप कॉपीज अवेलेबल करवा दो इंस्पेक्शन के लिए 21 दिन पहले, और साथ में भेजो मत, इतनी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, केवल नोटिस ऑफ द मीटिंग जब भेजोगे 21 दिन पहले, तो उसके साथ फॉर्म नंबर AOC 3 भेज दो जिसके अंदर साइलेंट फीचर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा लिस्टेड कंपनी आपको अपनी वेबसाइट पर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको वहां प्रोवाइड करनी पड़ेगी इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर कंपनी आपकी सब्सिडरी भी है, ये कंपनी शब्द में लिखा, लॉ में लिखा है शब्द कंपनी, बट यहां कंपनी का मतलब क्या है? केवल लिस्टेड कंपनी से, केवल लिस्टेड कंपनी से, उसकी हमने इंटरप्रिटेशन देखी। लिस्टेड कंपनी अगर आपकी कोई सब्सिडरी भी है तो आप उसको भी अपनी वेबसाइट पर उसके ऑडिटेड अकाउंट को प्लेस करोगे, ऑडिटेड अकाउंट को प्लेस करोगे। यहां मेरे सामने दो या तीन दिक्कतें आई। पहली दिक्कत तो ये थी कि मैं कहता हूं मान लीजिए कोई सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया है, और सब्सिडरी अगर आउटसाइड इंडिया है और उसके अकाउंट ऑडिटेड नहीं होते, क्योंकि विदेशों में कई ऐसी सब्सिडरियां होती है जिनके अकाउंट ऑडिट नहीं होते, तो अगर ऐसा केस है तो फिर आप अनऑडिटेड अकाउंट भी भेज सकते हो, फिर आप अनऑडिटेड अकाउंट भी भेज सकते हो। अगर दूसरी समस्या ये आई कि लॉ कहता है कि 21 दिन पहले भेजना पड़ेगा, मैं कहता हूं अगर 21 दिन पहले भेजना पड़ेगा बहुत अच्छी बात है, नोटिस ऑफ द मीटिंग 101 कहता है वो भी 21 दिन पहले भेजना पड़ता है, तो यानी कि नोटिस ऑफ द मीटिंग के साथ में ये सब जाता है। ठीक है, बट हमारे 101 सेक्शन कहता है कि कई बार मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे भी हो जाती है, मतलब कम दिन का, 21 दिन से कम का नोटिस दिया जाता है। अगर मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे हो रही है, मतलब 5-7 दिन का नोटिस दिया जा रहा है, तो फिर क्या यहां पर भी ऐसा कोई प्रोविजन है? लॉ में तो लिखा है 21 क्लियर डेज, तो फिर क्या करें? इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने अब नोटिफिकेशन निकाली इन दो टॉपिक्स के ऊपर। पहला, यहां पर शब्द है आपको ऑडिटेड अकाउंट ऑफ द सब्सिडरी प्लेस करने पड़ेंगे अपने साथ अपनी वेबसाइट पर, मगर मैं कहता हूं अगर सब्सिडरी फॉरेन सब्सिडरी है कोई जिसका ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है उस देश के कानून के मुताबिक, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने क्लैरिफिकेशन दी, कोई दिक्कत नहीं, आप अनऑडिटेड भी कर सकते हो। सिमिलरली सेकेंड जो क्लैरिफिकेशन आई वो ये कि अगर आप नोटिस शॉर्टर नोटिस दे रहे हो, 21 दिन से कम का दे रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसी के साथ ही जाएंगी, 21 दिन से कम में जाएंगी, ये भी क्लियर हो गई बात। तो दो क्लेरिफिकेशन हमने देखे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की। आगे, कंपनी अलाउ करेगी मेंबर और ट्रस्टीज को टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाकर कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह इंस्पेक्ट कर सकते हो। आगे, अगर तुमने डिफॉल्ट किया तो कंपनी 25,000 की पेनल्टी तुम्हारे ऊपर है, ऑफिसर के ऊपर 5,000 की पेनल्टी है। बट यहां पर एक रूल 11 आता है जिसकी बात लिस्टेड कंपनी पे अगेन लगता है, वो कहता है लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें सर्कुलेशन करना चाहिए। शब्द है सर्कुलेशन में, शब्द लिखा गया में। अब ये में का मतलब क्या है यहां पर, अगर तो आप डीमैट होल्डर हैं तो ईमेल्स के थ्रू ये सारी स्टेटमेंट भेजोगे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं हैं, अगर अगर आप फिजिकल फॉर्मेट में हैं तो आप फिजिकल कॉपीज भेज सकते हो, और अगर मैं कहता हूं आप फिजिकल फॉर्म में भी हो तो भी आप कहते हो कि कोई दिक्कत नहीं कंपनी, मेरे शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हैं बट मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे आप ईमेल्स कर दीजिए, तो कंपनी ईमेल्स कर देगी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू अगर द मेंबर कंसेंट दे देते हैं। यानी कि डीमैट होल्डर को तो दिया ही, इलेक्ट्रॉनिक मोड में जाएगा, और अगर कोई फिजिकल फॉर्म में है तो और वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए एग्री कर दिए गए हैं तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मोड, और अगर वो एग्री नहीं कर रहे हैं तो उन्हें फिजिकल कॉपीज कंपनी को देनी पड़ेंगी। बट सवाल उठा यहां पर, मैंने कहा एक पेज फंस रहा है, वो क्या, यहां पर आप लिखते हो कि लिस्टेड कंपनियां आपको ये इंस्पेक्शन के लिए दे सकते हो, बट यहां पर आप कहते हो कि लिस्टेड कंपनियों आपको ये भेजना ही पड़ेगा। तो फिर दोनों का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन निकाल के देखा जाए तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर ना एक शब्द लिखा गया है कि आप कंपनीज को इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रखना पड़ेगा, मगर 136 में एक शब्द लिखा गया है अनलेस एनी डिमांड इज मेट बाय शेयर होल्डर्स। जब तक शेयर होल्डर ने कोई डिमांड ना कर दी हो कि जी हमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए, अगर शेयर होल्डर ने डिमांड कर दी तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने डिमांड की है, और अगर डिमांड कर दी तो फिर आप रूल 11 के द्वारा आ जाओगे, और रूल 11 के द्वारा लिस्टेड कंपनियों अब आपको ये भेजना ही भेजना पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा सेक्शन 137, वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अटैच जो है वो आरओसी के पास फाइल किए जाएंगे विद इन 30 डेज ऑफ द एजीएम। एजीएम के अंदर जब वो अडॉप्ट हो जाएंगे, अडॉप्ट एडॉप्शन के 30 दिन के अंदर, अदर एजीएम में अडॉप्ट होने के 30 दिन के अंदर अंदर आप फाइल कर दोगे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनअडॉप्टेड है तो फिर भी फाइलिंग की जाएगी अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट टू द आरओसी विद इन 30 डेज। यानी कि अनअडॉप्टेड की भी, अनअडॉप्टेड को भी आरओसी के पास भेजा जाएगा, अनअडॉप्टेड को भी। क्लियर हो गए? बट जब आप अनअडॉप्टेड को आप आरओसी के पास भेजते हो तो इसे कहते हैं प्रोविजनल। क्या कहते हैं? प्रोविजनल। आपने अभी प्रोविजनल डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं क्योंकि अनऑडिटेड है। तो पहला पॉइंट कहता था ऑडिटेड आरओसी को दोगे जिस दिन ऑडिट होगा, जिस दिन सॉरी अडॉप्टेड आरओसी को दोगे जिस दिन अडॉप्ट होंगे। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है कि मेंबर्स ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया है, हमें स्वीकार है ये ऑडिटेड बैलेंस शीट। अनअडॉप्टेड का मतलब वो क्या होता है, मेंबर्स ने कहा नहीं हमें स्वीकार नहीं है, ये हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है, अनअडॉप्टेड। चलिए, तो अगर अनअडॉप्टेड है तो भी सबमिट करना पड़ेगा, अडॉप्टेड है तो भी सबमिट करना पड़ेगा। बट अगर एक बार अडॉप्ट हो गए, मान लीजिए ओरिजिनल एजीएम में अडॉप्ट नहीं हुए, आप 30 दिन के अंदर दोगे, फिर एडजर्न एजीएम हो गई उसमें हो गए, तो फिर आप फिर फाइल करोगे आरओसी को 30 दिन के अंदर ऑफ द एडजर्न मीटिंग। ठीक है जी, चलिए। तो प्रोविजनल के बाद फाइनल फिर सबमिट हो सकता है, जब तक सबमिट होता रहेगा, जब तक सबमिट होता रहेगा हर एजीएम में प्रोविजनल, तब तक सबमिट होता रहेगा जब तक कि फाइनल ना हो जाए, अडॉप्ट ना हो जाए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेंबर अपना अप्रूवल ना दे दें। चलिए, वन पर्सन कंपनी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस अदर डॉक्यूमेंट 180 दिन के अंदर अंदर सबमिट करने होते हैं। अगर किसी कंपनी की सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो फिर इफ इट्स दीज अकाउंट्स आल्सो टू बी फिल्ड, ये अकाउंट भी आपको फाइल करने पड़ेंगे। अगर मैं कहता हूं कोई सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया है, आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया नहीं है, फिर भी आपको ये अकाउंट फाइल करने पड़ेंगे आरओसी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ। ठीक है जी, फिर हम करते हैं इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट कुछ कंपनीज में रिक्वायर्ड होता है, वो कौन कौन सी है, पहला लिस्टेड कंपनियां और दूसरा है अनलिस्टेड कंपनियां। अनलिस्टेड कंपनीज की मैं अगर बात करूं तो अनलिस्टेड कंपनी में कौन कौन आता है, हर वो कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ऊपर है, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ऊपर है, आउटस्टैंडिंग लोन, ध्यान रखना यहां कहता है बोरोइंग 100 करोड़ से ऊपर है और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ऊपर है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में कौन आता है जिसकी टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ऊपर है, आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग मोर देन 100 करोड़ से। क्लियर हो गई बात, और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो ये लिमिट है जो आपको रिकॉल करनी है सेक्शन 138 के लिए। फिर उसके बाद मैं आता हूँ सेबी पर। मैंने आज सेबी के बारे में काफ़ी चर्चा की, मैंने कहा जी सेबी आपको पब्लिक इशू लाने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो होता है आईपीओ और एक हो सकता है एफपीओ। आईपीओ क्या होता है, जब आप पहली बार शेयर पब्लिक के पास लेके जाते हो दिस इज कॉल्ड आईपीओ, और जब पहली बार के अलावा आप कभी भी दोबारा पब्लिक के पास जाते हो, पब्लिक के पास, तो इसे कहा जाता है एफपीओ। आप आईपीओ हो या एफपीओ हो, ये दो तरीके के आ सकते हैं। या तो ये आएंगे या तो ये आएंगे फिक्स प्राइस इशू के थ्रू, जब फिक्स प्राइस होता है मतलब उसमें एक एग्जैक्ट प्राइस बता दिया जाता है कि ये हमारा प्राइस है, इसे कहते हैं फिक्स प्राइस के इशू, यहाँ पर प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। और कई बार फिक्स प्राइस का इशू नहीं होता, एक प्राइस बैंड दिया जाता है जिसे कहते हैं हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, वहां पे फिर बुक बिल्डिंग प्रोसेस को फॉलो करके एग्जैक्ट प्राइस निकाला जाता है, जिसकी चर्चा मैंने आपकी कॉपीज में करवाई है, आपके नोट्स में लिखवाया है। बट फिलहाल मैंने कहा ICDR रेगुलेशन, ये रेगुलेशन ऐसी है जो इशू ऑफ कैपिटल को गवर्न करती है। टोटल 106 रेगुलेशन है ICDR के अंदर, जिसके अंदर हम सबसे पहली रेगुलेशन आज कर रहे हैं 25, 26 और 27। आज की क्लास में हमने 26 पे चर्चा की, मैंने कहा 26 को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, एक है 26(1) और एक है 26(2). 26(1) क्या है? 26(1) उन कंपनीज के लिए है जिनका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और जो बहुत सारी कंडीशंस जो यहां दी गई हैं उनको सेटिस्फाई करती हैं। कौन-कौन सी कंडीशन 26(1) में दी गई हैं? 26(1) कहता है कि कोई भी कंपनी 26(1) के अंदर आईपीओ तभी ला सकती है जब उसके पास नेट टेंजेबल एसेट्स कम से कम 3 करोड़ की होगी, 3 पूरे फाइनेंशियल ईयर्स देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है जी, और जिसमें से 50% केवल 50% तक ही मॉनेटरी एसेट मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस की फॉर्म में हो सकती है। मैं कह सकता हूं कि अगर 50% से ज्यादा है तो लॉ कहता है फिर भी अलाउ है, अगर कंपनी के पास फर्म कमिटमेंट है उस पैसे को फ्यूचर में यूज करने का। फॉर एग्जांपल अगर 10 करोड़ आपके पास टेंजिबल एसेट्स है उसमें 9 करोड़ कैश बैलेंस पड़ा है, 26(1) नहीं लाने देंगे आपको क्योंकि अब मॉनेटरी एसेट 50% से ज्यादा हो गई, बस मेरे पास उस 9 करोड़ को रखने का लॉजिक है। मैंने सभी को बताया 9 करोड़ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि फ्यूचर प्रोजेक्ट में मुझे लगाना है, तो सभी अलाउ कर देगा क्योंकि फॉर्म कमिटमेंट आ चुका है, ठीक है जी। आगे एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 करोड़ है आपका, पिछले पांच में से तीन साल पर आपने रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखना है। नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ है, 3 फाइनेंशियल ईयर्स में 1 करोड़। आपका इश्यू साइज अपने लास्ट ऑडिटेड देखेगा उसका 5 गुना हो सकता है, लास्ट ऑडिटेड का 5 गुना, और ये पूरे साल का होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऐसा ना हो कि आपकी लास्ट ऑडिटेड नेटवर्थ थी 10 करोड़, तो 10 करोड़ का 5 गुना मतलब 50 करोड़ आप अगले फाइनेंशियल ईयर में इशू कर सकते हो भाई। अगर मैं कहता हूं ऑलरेडी मैं 40 करोड़ इशू कर चुका हूं प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, तो आप रिमेनिंग आईपीओ के थ्रू केवल 10 करोड़ ही इशू हो सकता है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5 गुना ऑफ नेटवर्थ से ज्यादा इशू नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? चलिए अच्छा यहाँ पर मैं एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 5 करोड़ नहीं है, ये 15 करोड़ है। 15 करोड़ का आपका एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पिछले 5 में से 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है जी। आज की क्लास हमने यहीं तक किया है, इसके आगे का कुछ नहीं किया, इसके आगे फिर हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। भाई आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की।